नहीं, सगो जे तू मैनू बजाउना चाहना ते लकड़ा घट कर, जो पावक ईंधन नहीं तरापै। जिवे ईंधन पाउण दे नाल बालण पाउण दे नाल अग्नि रजदी जिहड़ी, उसे तरह तृष्णा अत ही आग अत आग लगेगी। ते फिर महापुरश सुंदर नूं पुछिया सी, कहण लगे जी इह बुझाई किवें जा सकदी है। ते उस वेले महापुरश सुंदर ने आख्या, इको गल है, जे तृष्णा मारनी है, रोकना है, मन दे विच सुख ते चैन लैणा है, क्योंकि तृष्णा वर्गी बीमारी मनुख दे हिरदे विच जिन्ना चिर जिउंदी मनुख सुखी नहीं हो सकदा। जे सुख लैणा है तृष्णा तो छुटकारा पाउणा। सुंदर, एक संतोख बिना तेरी तो भूख कभी ना मिटेगी। एक संतोख है जिस नूं पा के सारियां भुखां मिट जांदियां ने। एक संतोख दा पल्ला फड़ ला, एक शुभ गुण इहो जिहा गुरबाणी विच साडे गुरुआं ने दिता, कहिंदे कि संतोख दा पल्ला फड़िया मनुख दी जिहड़ी तृष्णा खत्म हो जांदी ते मनुख सुखी हो जांदा है। ते इसे नूं ओ बाबा फरीद सूफी शायर लिखदा कि सबर एह सुआओ जे तू बंदा दिड़ करे है, वद थीवे है दरियाओ टुट ना थीवे है वाहड़ा। कहिंदे जे बंदिया तू अपने अंदर सबर धारण कर ले, संतोख धारण कर लवे, जिन्ना है उस दे विच सबर कर लवे, ते तू एक दरिया दे वांग बन जावेगा। ते दरिया किसे ते निर्भर नहीं रहिंदा, दरिया अपने आप दे विच महानता रखदा है। ओ सगों अपने विचों होर नदियां नहरां कढ़दा, नाले कढ़दा, ओ होरां नूं पानी दिंदा है। ओ किसे तो लैण वाला नहीं हुंदा, ओ फिर दाता बन जांदा, ओ फिर रज्या होया ओ राजा हुंदा। तू भुखे भिखारी तो उठ के तू रज्या होया राजा, ओ तू बन जा। ते जे तू बंदा दिड़ करे है, वद थीवे है दरियाओ टुटना थीवे है वाहड़ा। किते टुट ना जावी, टुटिया होया नाला है जेड़ा, ओ थोड़ी दूर जाके सुक जावेगा, खत्म हो जावेगा। पर तू सबर दा पल्ला फड़ के, संतोख दा पल्ला फड़ के संसार उते दरिया वांगर जी, दरिया बन जा, दाता बन जा। ते सतसंगियो, संतोख एक एहो जा शब्द है, क्योंकि सूफिया ते फकीरां ते उन्हां लोकां दे हिस्से ए शब्द आए ने। ते सारी उम्र इस शब्द दा पल्ला ना छड्डदियां होया उन्हां जीवन बतीत कीते सबर ते शुकर। एक वारी ईरान देश दे विच एक बादशाह ने अपने वजीरां अहल मंत्रियां तो पुछया, अहलकारां तो सियाने लोकां तो जिहड़े सभा दे विच बैठण वाले वजीर सन, कहिंदा सबर ते शुकर दे अर्थ समझाओ। उन्हां लोकां ने सबर ते शुकर दे अर्थ दसे वखरे वखरे अपने अपने हिसाब दे नाल। कोई भी बंदा स्पष्ट ना कर सकिया। उन्नू पता लगा उस वेले औरंगजेब हिंदुस्तान दा बादशाह सी। सूरज प्रकाश दे विच इस घटना दा जिक्र है। औरंगजेब दे दरबार दे विच पता लगा कि बड़े वड्डे आलम फाजल लोक रहिंदे ने, जिन्हां ने इलम हासिल कीता होया है। बड़े सियाने लोग जिहड़े सन औरंगजेब दी सभा दे विच बैठदे सन। उसने अपना एलची भेजिया कि तू उस थान जा ते उत्थों सबर ते शुकर दे अर्थ पुछ के आ। कहिंदे एलची सी जिहड़ा औरंगजेब दे दरबार विच आया, उसने पुछिया किसे तो तसल्ली ना कोई करवा सकिया कि सबर ते शुकर दा अर्थ की हुंदा है। जदों निराश हो गया ते उदों उत्थों तुरन लग गया। उन्हां ने आख्या सी जे तेनू कोई औरंगजेब दे दरबार दे विचों कोई भी इस तरह दा सियाणा विद्वान तेरी तसल्ली ना करवा सके ते उस वेले तू उस दिल्ली दियां गलियां विच फिरदे सरमद फकीर दे कोलों ए अर्थ पुछी। गलियां दे विच सरमद फकीर बारे पुछया, पता लगा उते बादशाह औरंगजेब ने जेल दे विच बंद कीता। बड़ा हैरान होया, जेल दे विच गया, जाके मुलाकात कीती, वेख्या की कि एक जड़ा है वह आदमी आउंदा जेल दे विच, सरमद फकीर दे 100 कोरड़े बड़ी जोर दे नाल मारदा, पर सरमद फकीर चुप चाप बैठा है। 10 कु मिंट बाद एक होर आदमी आउंदा, वह एक रोटी ते उस उत्ते लून दी डली रखी हुई है, वह दे जांदा है ते सरमद फकीर उसनू खा लैंदा। सरमद फकीर नूं सवाल कीता है सेलची ने, कहिंदा जी सबर ते शुकर दे अर्थ पुछण वास्ते आया। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦਿਸਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਈਏ ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਏਲਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਰਮ ਰਾਜ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜ ਹਕੀਕਤ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਲੋਕ, ਉਹ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਸਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸਬਰ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਲਿਸਤਾਂ ਤੇ ਬੋਸਤਾਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਫਕੀਰ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਿਹਣੇ ਕਦੋਂ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਊਂਠ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਊਂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਤਰੀ ਵੀ ਤਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਊਂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸੇਵਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਰੱਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਸੇਵਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਸਦਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਨੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਸਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, नमाज पढ़दा उस दा शुक्र अदा करदा उस दा नाम लैंदा उसकी सिफत करदा जिहदी तू सिफत करदा जिहदे गुण तू गायन करन आउंदा उह तैनूं लत्तां वी नहीं दित्तियां मैं ते आवे मैनूं जोड़ा नहीं सी दित्ता ते मैं उसनूं कई कुछ कहिंदा इस सफर नूं तय करदा आया उह कहिंदा मैं ते शुक्र करदा रब दा मैं क्यों भला मेहने देवां मैं क्यों रब दे नाल नाराज होवा मैं ते शुक्र करदा रब्बा तेरा शुक्र है मैनू घट्टो घट हथ ते दिते ना मैं हथां दे सहारे चल के इत्थे आ ते सकदा है कुछ लोग ते ओह भी होणगे जिन्हां दे हथ भी ना होणगे ओह किवें जींदे होणगे जे सुख दे ता तुझे त्याई दुख भी तुझे त्याई जे भुख दे ता इत ही राजा दुख विच सुख मनाई उन्हों का सबर उन्हों का संतोख यह है कि दुख दे विच भी जड़ा है वह शुक्र मनाउना परमेश्वर का वह कहिंदा मैं ते शुक्र करदा परमेश्वर का मैनू हथ ते दिते है मैं हथां दे सहारे चल के जड़ा है वह परमेश्वर दे इस सिफतो सलाह करन वाले इस स्थान ते पहुंच जाना तो उहदी सिफत गायन करदा उसके गुण गाउना जे भला हथ भी ना देंदा यह है सबर दिते हुए ते सबर करना जिन्हू बाबा शेख फरीद लिखता सबर मंज कमान ए सबर का निहनो सबर संदा बाण खालक खता ना करी ए मनुख तेरे कोल सबर दा जड़ा है ओ कमान होवे ते उस ते चिल्ला भी सबर दा चढ़िया होवे ते उस सबर दे चिल्ले चढ़े हुए दे उत्ते जड़ा बाण होवे तीर होवे ओ भी सबर दा होवे ते जदों सबर दा तीर चलावेगा संसार उत्ते एहो जी कोई ताकत नहीं जड़ी तेरे अगे झुक ना जावेगी खालक खता ना करी फिर खालक भी जड़ी है ना जड़ा परमेश्वर भी है रब भी है वह भी खता नहीं करता वह भी जड़ा है वह तेरे हुक्म नूं मनदा है क्योंकि सच जाण्यो गुरबाणी का सिद्धांत है कि सब कुछ तेरा है वस अगम अगोचरा तू भगता कै वस भगता कान तेरा उत्थे भगतां दीआं निशानियां ए दसियां ने बाबिआं ने बाणी दे विच कि भगत सबर ते संतोख वाला होवे ते सचमुच उन्हां भगतां दे वस विच हुंदा परमेश्वर ते ए जिहड़ी तीसरी गल जिसदा मैं जिक्र शुरू दे विच कीता सी कि गुरबाणी दे विच तीन गल्लां दा जिहड़ा प्रोड़ता जिहड़ी ओह कीती है मुख जिहड़े संदर्भ ने गुरबाणी उचारण दे जिथे पहली गल यह सी कि सिद्धांतक परपेख जिहड़े सामने लियांदे सिद्धांतक गल्लां कीतियां ब्रह्म की आश्चर्यता उसकी बेअंतता की गल सृष्टि के रचना विधान की गल जपजी साहब दे विच इस तरह का काफ़ी जिक्र गुरु साहब गुरु नानक देव ने किया हुक्म की गल होमै दूर करन की गल नाम ते प्रेम वर्गे सिद्धांत गुरबाणी ने फरोले उन्हां दा जिक्र किया जिथे गुरुआं ने समकाल नूं अपने नूं गुरबाणी दे विच चित्रिया मैं शुरू दे विच जिहड़े सुरजीत पात्र दे शब्द बोले ने कुछ किया ता हनेरा जरेगा किवें चुप रहा ता शमादान की कहणगे बाबे ना चुप कीते ते उस जुलम ते अत्याचार दे खिलाफ बोलदे रहे जे गुरु नानक बाबर दे खिलाफ बोलदे गुरु गोबिंद सिंह ने औरंगजेब दे नाल टक्कर लाई ते सतगुरु राम सिंह वेले दी हकूमत बरतानवी साम्राज दे नाल टक्कर लाउंदे ने बिल्यो ए देश ते साडा है तुसी कौन हुंदे हो इस देश ते आके कब्जा करके सानू गुलाम बना के क्योंकि गुरु राम सिंह कदे अंग्रेज दे विरोधी नहीं सी एक गल जाणियो गुरु नानक बाबर दा विरोधी नहीं सी बाबर नाल पीढ़ियां दा वैर नहीं सी गुरु नानक दा औरंगजेब नाल गुरु गोबिंद सिंह दा वैर कोई नहीं सी पर सोचां दा टकराव हुंदा उह संसार दे उत्ते लोकां नूं दुख दे के अपना हुक्म चलाउणा चाहुंदे ने ते पर सतसंगीओ गुरु साहब इह हुंदे ने कि उह किसे दा उत्ते किसे उत्ते हुक्म नहीं चलण दिंदे जिहड़ी मैं उस दिन एक दिन पहलां गल कीती सी उह ते सिधांत दिंदे ने पै काहू को देत नह नह पै मानत आन ना किसे नूं पाई डराउणा ते ना किसे तों डरना ते सतगुरु राम सिंह ने भी अंग्रेज का विरोध इस करके किया कि तू तैनू किसने हक दिता भी भला तू किसी नू गुलाम बना सके ते यही कारण सी गुरु नानक ने जिहड़ी गुरबाणी रची वह इस संसार का मालक एक परमेश्वर आख्या वखरे वखरे जिहड़े लोग सन धार्मिक उन्हां दे जंजाल विचों कढ के एक परमेश्वर की सेवा नू करन ते उत्ते जोर देंदे रहे ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਰਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜਾਚ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬਰ ਸੰਦਾ ਬਾਣ ਤੇ ਖਾਲਕ ਖਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਸਬਰ ਇਹ ਸੁਆਓ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿੜ ਕਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਧ ਥੀਵਹਿ ਦਰਿਆਓ ਟੁੱਟ ਨਾ ਥੀਵਹਿ ਵਾਹੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।